یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری وائز نمبر
757. میں نے چالی کی لیکن میں خالی 50 پاس پورے کر رہا تھا اور وہ بنا جو ادھر کے پروگرام میں تھا وہ مجھے دل نہیں تھا وہ کتاب نہیں رہی. لیکن یہ 50 کی جگہ میں آج پوری ادھر کرتا ہوں تو یہ کمپلیٹ ہو جائے. میرا نام جگنام سے چل رہا تو شکریہ جن کی صدر دن تھی. سو سکھا من ہے جس کے اندر انسان کو دنیا کے اندر کس طرح سے نیتی اور حفاظت سے چلنا, نہانا دھونا, صاف پاک شریر رکھنا, ٹوائلٹ میں جاتے وقت ہمیں پانی یوز کرنا, ہر روز نہانا, اچھا کھانا کھانا, یہ سب اس کے اندر کریا اور باتیں ہیں. یہ جو سو کریا کی 50 باتیں باقی ہیں تو اکاون ہی لنچ میں چالو کرتا ہے. ہند کمار کو نہ کھائے پرانی رے بھائی, ہند کمار کو نہ کھائے پرانی تماکو نہ کھائیے پرانی. پھر اس زمانے کے اندر جو زمانہ ہوا ہے اس زمانے میں ہند تماکو پہنچ چکے تھے. ہند ہندو لوگ کھاتے ہیں, ہم مسلمان ہند نہیں کھاتے. آپ کو معلوم ہے ہند کو گجراتی میں بجانے کے وقت کہتے ہیں. افغانستان, ایران اور کشمیر کے نزدیک کچھ علاقوں کے اندر ہینگ ہوتی ہے. یہ ہینگ جب تیار ہوتی ہے یہ قسم کے بیج ہیں اور اس ہینگ کو پکانے کے لیے گدھیڑے کے چمڑے میں بند کر کے اس کو رکھتے ہیں. اور جو گدھیڑا ہے گدھا, اس کا گوشت اور چمڑا اسلام میں حرام ہے. اس کے لیے یہ جو ہینگ ہے وہ گدھے کے چمڑے میں اگر نہ رکھی جائے تو اس کے اندر وہ خوشبو نہیں آتی کہ جو ہندو لوگ کھاتے ہیں. کبھی بھی کسی ہندو دوست کے گھر کھانے جاؤ تو پوچھو کہ اس میں ہینگ ہے, اور اگر ہے تو ہم کو نہیں کھانا چاہیے. مسلمان ہینگ نہیں کھاتے. جس طرح ہم لال نہیں کھاتے, لکڑ کا گوشت نہیں کھاتے, اس طرح سے ہمارے مذہب کے اندر ہینگ کھانے کی منائی ہے. दवा के तौर के ऊपर कभी यूज किया जाए तो हो सकता है, और वो उस वक्त हो सकता है कि जब हमें कोई और दवा काम न आती हो, आखिरी हथियार के तौर पे हम हींग यूज कर सकते हैं। इसी तरह से जो टोबैको है वो भी पीर ने मना किया है, और हमारे और भी यूनानों के अंदर तंबाकू के लिए फरमान किए हैं। एक जगह पीर ने बहुत बुरे शब्दों में तंबाकू को याद किया है, परमात्मा के हींग तंबाकू न खाने प्राणी, ऐसी तुम हींग और तंबाकू का यूज न करो। परम उपवासी रहने जाने, परम उपवासी कहते हैं जो रोजा रखे, और परम उपवासी का मतलब है हर वक्त रोजे में रह रहे। इमाम सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद करो कि इमाम फरमाया कि रमजान में तुम 30 रोजे रखते हो, ठीक है, लेकिन मोमन का 365 दिन रोजा होता है। यह है परम उपवासी रहना। 365 दिन का रोजा यानी हम कोई बद काम न करें, खराब काम न करें, गुनाह न करें, और हर वक्त हमेशा अपने कैरेक्टर, अपने आमाल और अपने विचारों को पाक साफ रखना चाहिए। बोतियों चाटियों गेहूं खावे नहीं। एक आदमी खाना खा चुका है और उसने कुछ खाना बचाया, ये बचा हुआ खाना, किसी का खाया हुआ बचा हुआ खाना, ये कहते हैं मत खाओ, इसको हम बोलते हैं ऐसा खाना, झूठा खाना। क्योंकि जब इंसान खाना खाता है हाथ से मुंह में डालता है, इंसान के मुंह का जो सलीबा है वो उसकी उंगलियों को लगा होता है, अगर वो फिर खाना खाता है तो ये उसकी मुंह का सलीबा उंगलियों की मार्फत उसके अंदर खाने में जाता है। हो सकता है कि उस आदमी को कोई ऐसी बीमारी हो गई कि जो चेपी रोग है, तो कभी तुमने उसका ऐसा जूठा खाया तो तुमको भी वो बीमारी लग सकती है, इसके लिए पीरों ने मना किया। इसके अलावा एक और चीज है, वो लोग जो नीच प्रकार के हैं, वो लोग के जो बदमाश हैं, गुनहगार हैं, क्रिमिनल हैं, जिनके विचार जानवर की तरह है, ऐसे इंसान का ऐसा जूठा खाने से भी इंसान के विचार खराब होते हैं। लेकिन सगे भाई बहन, मियाँ बीवी, बाप बेटे, माँ बच्चे, जो एक ही ब्लड के हैं, वो कभी एक दूसरे का ऐसा रेखा खा ले तो उसमें कोई हरकत नहीं, कि अगर उसमें एक शर्त है तो किसी को बीमारी ना हो रहे। ये जो ऐसा जूठा खाने की जो बात है ये बहुत पुरानी बात है, और इसके अंदर बीमारियां पैदा होती हैं। पीरों के फरमान के हिसाब से अगर कोई आदमी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको उसमें से एहसास निकाल के कह रहा हूं कि अगर दो आदमी, चार आदमी, दस आदमी एक ही साथ ऐसे चालीस खाना खाते हो, मैं नष्ट हो, लेकिन एक आदमी ने खाना खा के छोड़ दिया है तो वो ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। फिर फरमाते हैं कि दरियार वस्त्र में पहलू भाई, हिंदुस्तान के अंदर एक झाड़ है, उस झाड़ की जो बाँस होती है छाल, उसको पानी के अंदर बॉयल करके आदमी कपड़ा रंगते हैं, इसको काला रंग आता है। तो यहाँ दरियार वस्त्र का मतलब ब्लैक कलर के जो कपड़े हैं, हमारे पीरों ने मना किए हैं कि काले कपड़े पहन के तुम जमा खाने न खाओ, हमारे इमामों ने भी मना किया है और रसूल पाक ने भी मना किया है। नबी करीम की हदीस है कि अहले बैत के जो दुश्मन हैं उनका रंग काला है, उनके फ्लैग का रंग भी काला है और वो काले कपड़े पहनते हैं। ये नबी ने इशारा किया अब्बासियों की तरफ। रसूल अकरम की वफात के बाद जो चार खलीफा हुए, ये चार खलीफों के बाद बनी उमैया की खिलाफत शुरू हुई कि जो लगभग 90 वर्ष तक चली, और उसके बाद इमाम जाफर सादिक के जमाने के अंदर बनी उमैया को हरा के मार के कत्ल करके عباسیوں نے راج قائم کیا اور یہ عباسی خلافت کا زمانہ تھا. ان عباسیوں نے بنی حاشم کی مدد لی مگر بعد میں یہ لوگ بنی حاشم کے دشمن ہوئے. بنی حاشم مولا کی فیملی کو کہتے ہیں. رسول اکرم جو ہیں وہ بنی حاشم ہیں, اہل بیت ہیں وہ بنی حاشم ہیں, پنچن پاک ہیں وہ بنی حاشم ہیں, اور انہوں نے عباسیوں نے بنی حاشم کے ساتھ دوستی کر کے ان کو مارنا شروع کیا. اور رسول اکرم نے 100 برس پہلے اس بات کے لیے پیشنگ ہوئی یعنی فور کاسٹ کیا تھا کہ بنی حاشم جو ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں, اور ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کا فلیٹ بھی کالا ہوگا اور ان کی یونیفارم اور کپڑے بھی کالے ہوں گے. اور حقیقت میں عباسیوں کا لگ بھگ 600 سے 700 برس تک عباسیوں نے خلافت کی, ان کا فلیٹ کالا تھا. نبی کریم نے کالے کپڑے پہننے کے لیے منع کیا اور ہمارے اماموں نے بھی منع کیا. یہ چیز آہستہ آہستہ نالج نہ ہونے کی وجہ سے, اگنورنس کی وجہ سے ہمارے بہت سے بھائی ہیں کالے کپڑے پہن کے جمع کھانے کے اندر آتے ہیں, اس کی اجازت نہیں. اگر نہیں پتا تو آج آپ سن رہے ہو. مولانا امام سلطان محمد صلی اللہ علیہ کو ایک آدمی نے مہمانی کے اندر کچھ چیزیں پڑی تھیں, اس کے ساتھ ایک گھڑیال بھی تھی, بہت قیمتی گھڑیال تھی, لیکن اس کا جو وہ پٹا تھا وہ کالا تھا. مولانا نے فرمایا کہ یہ اٹھا لو, میں کالی چیزیں نہیں قبول کرتا. مولا بہت ناراض ہوتے تھے کالے کپڑوں کے لیے, اور خصوصاً طور پہ ہمیں جماعت خانے تو بالکل نہیں پہننے چاہیے. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ بعض جماعت خانوں کے اندر گھنٹ پاٹ پہ بیٹھنے والے خاص طور پہ لڑکیوں عورتوں کے اندر یہ عادت بہت ہے, وہ اپنے آپ کو خوبصورت زیادہ دکھانا چاہتے ہیں. یہ بات جب بھی آپ کو کسی پارٹی میں کرنی ہے تو بھلے, لیکن جماعت خانے میں نیاز اور گھنٹ پاٹ اور دعا اور تصویر کے اندر بھی کالے کپڑے پہن کے آتے ہیں. میں کبھی مفتی کی گادی پر بیٹھا ہوں تو میں ایسوں کو اجازت دینا دوں کہ تم دعا پڑھاؤ یا تصدی نکالو. جو چیز ہمارے امام نے اور چیز نے ہمیں منع کی ہے اس چیز کو کرنے میں ہمیں کون سی خوشی ہو سکتی ہے؟ یہ چیز بری ہے, پیروں نے ہمیں منع کیا ہے. پندرہ 20 دن بول بول کے گھر خراب کیا گھر. اپواس گرت آلس کرنی پکڑنی پوجا نہ کرنی. اس قدر دن فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو, اپواس رکھو, ورت رکھو, ورت کہتے ہیں کوئی ٹیک رکھنا, تو اس کے اندر آلس نہ کرو, سستی نہ کرو. اپواس کہتے ہیں روزے کو, ورت کہتے ہیں ٹیک کو. اگر شکر والی بیج آئی ہے تو یہ اپواس ہے. لیکن ہمارے مجھ سے بہت سے ایسے بھائی ہیں کہ جو سبنی کا روزہ رکھتے ہیں, مولا کا روزہ جس کو کہتے ہیں, وہ ورت ہے وہ ٹیک ہے. آپ کی خوشی پڑے رکھو, خوشی پڑے نہ رکھو, لیکن کبھی آپ نے ٹیک لی ہے کہ میں ساتویں کا روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی, تو رکھنا چاہیے. اسی طرح شکر والی عید جو ہے ہمارے مذہب کے اندر بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور وہ اپواس ہے. تو پھر فرماتے ہیں کہ اپواس اور ورت رکھنے میں تم آلس نہیں کرنا. اور پہان, پہان کہتے ہیں پتھر کو, اور جھاڑ پتھر پان وغیرہ جو ہے ان کی کبھی بھی پوجا نہیں کرنا, یعنی بت پرستی مور کی پوجا نہیں کرنا. بہت سے ہمارے بھائی بہن اب وہ چیز گٹتی بھی جاتی ہے, حضرت امام کی فوٹو کھڑتی ہے, اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے آنکھیں بند کر کے اس کو اپنا ایک عشق مان کے جو کرتے ہیں, وہ چیز بھی ہمارے مذہب میں غلط ہے. میں لگ بھگ 40-42 برس سے جماعتوں کے اندر وائز کرتا رہا, اور میں نے ہمیشہ اس بات کے لیے جماعت کو عرض کی کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ باطنی نورانی مذہب ہے. ہمارا تعلق, ہمارا سبب حضرت امام کے نور کے ساتھ ہے. ہم تو حضرت امام کے شریر کی بھی پوجا نہیں کرتے. تو یہ پتھر پانی اور یہ جو ہماری مورتیاں وغیرہ ہیں یہ کوئی پوجا کی چیز نہیں, لیکن امام کے فوٹو کی عزت کرو کیونکہ وہ ہمارے مولا کی پکچر ہے. उस फोटो की भी बेअदबी नहीं होनी चाहिए। और फोटो हम इसलिए रखते हैं कि ये किस्म की हमें रिमाइंडर है कि ये हमारा ईमान है, ये एक प्रेम और मोहब्बत की बात होती है। फोटो रखना अच्छी चीज है, लेकिन फोटो की इबादत करना या उसको वर्षित करना, उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाना, तो ये हिंदुओं की बातें भी यही है। मुसलमान भी ऐसी हालत में पड़े हुए हैं। जब हज करने के लिए मुसलमान जाते हैं तो वो एक पत्थर न बोलता है न चालता है, उसका डार्क ब्राउन रंग है, काला दिखता है। इस पत्थर को काला पत्थर के नाम से याद किया जाता है और यही वो पत्थर है जो खाने काबा में मक्का के अंदर लगा हुआ है। हाजी लोग जब जाते हैं तो इस पत्थर को चूमते हैं, तो पत्थर को अगर चूमा जाता है और उन लोगों को इसमें कोई शिकायत नहीं, तो महज हम पूजा नहीं करते, फिर भी अपनी जमाखानी या घरों के अंदर हमने जो हजरत इमाम की फोटो रखी है, तो उन फोटो की हमें इज्जत करने के अंदर कोई रोकता नहीं। मौला की फोटो की बेअदबी और डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। कभी भी जमीन के ऊपर इमाम की फोटो मत रखो। हम उसकी पूजा नहीं करते लेकिन उसकी अदब करते हैं। लेकिन हम इस्माइलियों ने कभी भी पत्थर की या पानी की या झाड़ वगैरह की या किसी और चीज की पूजा नहीं की। हमारे मजहब के अंदर इस बात को मना किया गया। फोटो की बात निकली तो एक बात आपको मैं इल्म की बात बताऊं। हो सकता है कभी किसी मुसलमान भाई के साथ फोटो की संबंधी आपकी कुछ बात हो रहे तो ये बात आपको याद रहे। हदीस शरीफ के अंदर नबी की जो ट्रेडिशन है उसके अंदर से एक हदीस की रिपोर्ट मिलती है। हदीस में ऐसा है कि रसूल खुदा को जिब्रील अमीन एक दिन आए और उन्होंने नबी को एक पिक्चर दिखाई कि ऐ नबी, इस औरत के साथ आपकी शादी होगी और वो बीवी आयशा थी। मैंने आपको ये बात सुनी हदीसों में से, सुनी सोर्सेज में से बताई है, लेकिन हम इस्माइली नहीं मानते इस बात को, ये सुन्नियों के लिए है। लेकिन मैंने आपको इसलिए सिखाई कि हो सकता है कि कभी कोई सुन्नी भाई आपके साथ इस बात के लिए हो, वैसे तुम आगा खान को ये मानते हो वो मानते हो पूजा करते हो, तो उसको कहो कि हम आगा खान की पूजा नहीं करते, हम आगा खान के अंदर जो अल्लाह का जो नूर है हम उसकी इबादत करते हैं और उसका हुक्म मानते हैं, क्योंकि आगा खान जो है वो ओले अम्र है और तुम और तुम्हारी किताबों के अंदर के नबी साहब को भी पिक्चर दिखाई गई। मुझे मालूम नहीं कि जिब्रील अमीन कौन सा कैमरा लेके आए थे, लेकिन नबी को पिक्चर दिखाई हाथ के ऊपर। तो मैंने इधर की नबक करना है कि पत्थर और झाड़ वगैरह की पूजा कभी नहीं करना। मेरी था पन्ना रखवी जानी, वक्त वेला ना चूतिये प्राणी। मेरी थापन, थापन कहते हैं कोई चीज के अंदर हम अपना कैपिटल लगाएं, इन्वेस्ट करें। मेरी थापन कौन सी? किसी भी गंदे काम में, कोई ऐसा काम है जो मजहब के खिलाफ है, उसमें इन्वेस्टमेंट मत करो, उसमें अपना पैसा मत लगाओ कि उसकी आवक खाओ। बाद ऐसे आदमी हैं जो कामकाज नहीं करते और अपने पैसे को लोगों के अंदर हाई इंटरेस्ट के ऊपर देते हैं, यही उनकी आवक है। ये भी मेरी थापन है और फिर हमने इस चीज को मना किया है। हाँ, आप कामकाज करते हो और पैसा बचा के बैंक में रखा है और बैंक का ब्याज मिलता है, उसके अंदर इनकम टैक्स निकालो, दसवन निकालो, खाओ पियो, ये हलाल है, इसमें कोई चीज खराब नहीं। लेकिन प्योरली अपने पैसे को इंटरेस्ट में लगा के उस इंटरेस्ट के ऊपर ही हम अपनी मेंटेनेंस करें, ये चीज मना की गई मजहब के अंदर और इमाम ने भी मना की हुई है। तो फिर फरमाते हैं मेरी थापन न रात्रि जानी, वक्त वेला न सूखी प्राणी, यहाँ वक्त वेला का मतलब जमा करने का टाइम, दुआ पढ़ने का टाइम, इबादत करने का टाइम, हमारी मजहबी क्रिया कर्म, हमारे मजहबी जो फर्ज और ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके वक्त को चूकना नहीं। आज़र इमाम फरमाते हैं कि तुम कहाँ भी हो, जिधर भी, दुआ का अगर टाइम आ गया है तो तुम अपनी दुआ पढ़ लो, मोटर में पढ़ लो, चलते चलते पढ़ लो, किधर भी हो। और हज़र इमाम ने अभी अभी थोड़ा खुलासा किया, 2 महीने पहले स्टेज के अंदर, मामा फरमाया तुम ऐसी जगह हो कि जहाँ तुम दुआ भी नहीं पढ़ सकते, तुम किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, तुम कोई यूनिवर्सिटी की क्लासेस में हो कि जहाँ तुम बैठ के दुआ नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम अपने दिल के अंदर दुआ का वक्त आवे ना तो याद कर लो, या मौला दुआ का वक्त है, मैं नियत करता हूँ दुआ की। बाबा फरमाया उसके बाद अर्लीस्ट टाइम जो तुमको मिले अपनी दुआ पूरी करो, लेकिन एग्जैक्टली दुआ के टाइम के ऊपर कभी 7 का टाइम है या 7:30 का टाइम है, 5-10 मिनट आगे पीछे होने में कोई हरकत नहीं, मगर दुआ के टाइम में विद इन 15 मिनट अप एंड डाउन आप अपनी नियत करके मौला को याद कर सकते हो। मुझसे फरमाते हैं कि वक्त वेला को तुम्हारी जो धार्मिक फर्ज हैं उसके वक्त को, उसकी पंक्चुअलिटी को या उसकी रेगुलरिटी को कभी खराब मत करो। अच्छी नसीहतें हैं हमारे शरीर में, हमारे ख्याल में, हमारी आत्मा में, इन नसीहतों के अमल करने से हमारी लाइफ में फर्क पैदा होता है। फरमाया अमर थी में जितनी इच्छा, एक कतार बैठ के, एक आसन लगा के, जम के बैठ के तुम जाप जपो, ये बैतुल ख्याल की इबादत की बात करते हैं, उनको एक आसन लगाओ और बिल्कुल अनडिस्टर्ब होके, बाहर के तमाम ख्यालों को छोड़ के तुम बैठो और बैतुल ख्याल का जाप जपो। मंदिर से खादे महापाप, बगैर सिर से हुए खाना मत खाओ, ये गुनाह होता है। क्या मतलब इसका? कई लोग हैं सुपरिये ने खाना पकाया, जो कुकिंग पॉट है आपने उसमें खाना पकाया, फ्राई पैन के अंदर आपने ऑमलेट बनाई, तो फिर कहते हैं जिस चीज में तुमने पकाया है वो सुपरिया के फ्राई पैन को डायरेक्टली टेबल पे या जमीन पे रख के उसमें खाना मत खाओ, उसको कोई जल्दी प्लेट में निकालो और जितना चाहिए उतना निकालो, ताकि वो ऐठा ना होवे, खराब ना होवे। सुपरिये में हाथ डाल के मत खाओ, ये अच्छी आदतें हैं, उनके अंदर भेद भी हैं। धीरे पुराने जमाने के अंदर आजकल की तरह बहुत एडवांस टाइम न होने की वजह से आज हम तो ऐसे सुपरिये कुकिंग पॉट्स और फ्राई पैन वगैरह मिलते हैं कि जो स्पेशल धातु या स्पेशल कोई मेटल के बने हुए होते हैं। पुराने जमानों के अंदर घर बार बड़े थे, फैमिलियां बड़ी थी, जब वो खाना पकाते थे तो बड़े सुपरिये होते थे कि जिसमें 10-20 जने खाना खाते थे। अब उसके अंदर डायरेक्टली जो खाना शुरू कर दे रहे तो ये सारा खाना ऐठा हो जाए, जूठा हो जाए, तो फिर ने उसके लिए मना किया है। फिर भी कभी आप सिंगल हो तो भी ऐसा मत करो, फ्राई पैन में कोई चीज बना के उसको प्लेट में डाल के खाओ, ये गुड मैनर्स भी हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि हमारे पीरों ने हमको कैसी कैसी बातें सिखाई हैं। लालच प्यारी ना करिए भाई, माता जानो तमें वदेरी भोजाई। लालच ना करो, ग्रीडी ना बनो, लालच प्यारी न करिए भाई, लालचू मत बनो। और जो तुम्हारी बड़ी भाभी है उसको माँ की तरह इज्जत करो, तुम्हारे बड़े भाई की जो बीवी है उसको माँ की तरह, बड़ी भौजाई है उसको माँ की तरह इज्जत करो। हिंदुओं के अंदर एक खराबी है, इंडियन सोसाइटी के अंदर बार दफा देवर और भाभी के ताल्लुक हो जाते हैं, कनेक्शन हो जाता है और बहुत उसके अंदर जना और विचार और एडल्ट्री हो जाती है। हमारे मजहब के अंदर, इस्लाम के अंदर खसूसी और इस्लामी मजहब के अंदर ये एक बात है कि हम अपने वजीलों को इज्जत की नज़र से देखते हैं। हमको तो ये कहा गया कि अपनी बीवी के सिवा जितनी भी दूसरी दुनिया की औरतें हैं उनको माँ बहन समझा जाए, मगर ये पर्टिकुलर इसलिए कहा गया है कि भाभी और देवर का जो रिश्ता है वो बहुत नज़दीक का रिश्ता है। भाई कभी बाहर चला गया है तो बहुत दफ़ा घर के अंदर देवर होता है, तो उसकी नज़र खराब नहीं होनी चाहिए। ये कहते हैं कि अपने भाई की बड़ी जो भाई भाभी है, भाई की वाइफ, उसको माँ की तरह समझो, और कभी तुम्हारे छोटे भाई की जो औरत है तो उसको तुम अपनी बहन या बेटी के तौर पे मानो। माँ का जानी तमें हो जाई संग से लिया आलू पगड़ी वाकी न बंदरी भाई। नीची नजर करके नीची संगत, वो आदमी के जो नीच है, नीच इंसान है, खराब है, बदमाश है, जिनके आचार विचार अच्छे नहीं है, क्रिमिनल टाइप के हैं, शराबी हैं, कबाबी हैं, और भी उनके अंदर प्रोमिस्कस लाइफ जैसी चीजें हैं, ये कहते हैं उनकी दोस्ती मत करो, क्योंकि उनकी दोस्ती करने से तुम्हारे आचार विचार ख्याल वगैरह वो खराब हो जाएंगे, तुम्हारा करैक्टर खराब हो जाएगा, तुम्हारी भरम इबादत बंदगी के अंदर नुकसान होगा। तो फरमाया कि नीच इंसान से संगत दोस्ती न करो। संगत दोस्ती एक बड़ी पावरफुल चीज है। हमारे गुनाहों के अंदर मौला के फरमानों में हमारे पाक नबी की अहादीस के अंदर, कुरान शरीफ के अंदर, हमारे वडीलों बुजुर्गों की कहवतों के अंदर ये हमेशा नसीहतें आती रहती हैं। दुनिया के तकरीबन हर मजहब ने नीच आदमी की संगत दोस्ती करने से मना किया है। उसकी दोस्ती करो जो तुम्हारे जैसा अच्छा होवे, उसकी दोस्ती करो जो तुमसे भी अच्छा होवे, उसकी दोस्ती करो कि जिसकी दोस्ती से हमें फायदा होवे, और उसकी दोस्ती करो कि जो तुम्हारा हाथ पकड़े, तुम्हें नेक रस्ते के ऊपर लगावे। दोस्ती जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है इंसान के जीवन में, और हर इंसान का कोई ना कोई दोस्त होना चाहिए। मौला मुर्तज़ा भी मुश्किल पूछा फरमाते हैं कि तुम्हें एक अच्छा दोस्त जरूर ढूंढना चाहिए, लेकिन अच्छा दोस्त किस्मत से मिलता है, या किस्मत का मतलब मेहनत करने से मिलता है, और जब एक दोस्त मिलता है तो फिर उसके साथ अच्छी तरह ऑनेस्टी के साथ रहना चाहिए, दोस्त के साथ दगा नहीं करना चाहिए। पगड़ी वंशी न पहली भाई, पुराने जमाने पीर के जमाने में टोपियां कम थी, लोग आज पगड़ी पहनते थे, तो जो टोपी भी पहने या पगड़ी पहनो तो वंशी का मतलब तेजी करके उसको ऐसा मानते हैं। इसमें पता है क्या बड़ाई और मजरूरी पैदा होती है इंसान के दिल के अंदर, ऐसा होता है मैं कैसा अच्छा लगता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। आईने के सामने खड़ा होता है, मुँह मरोड़ता है, दाढ़ी ठीक करता है, पगड़ी वांछी करता है, उसके दिल में बड़ाई आ जाती है, प्राइड आ जाता है, ये चीज अच्छी आदत नहीं। पांचवा पाठ है, आर पर ही के न करी रूसी पड़ोसी ने रखो करता रखे करता दुखी। तेरी मेरी इधर की उधर, उधर की इधर, एक को कहा कि वो आए ना, वो तुम्हारे लिए ऐसा बोलता था, उसको कहा कि वो तुम्हारे लिए ऐसा बोलता था, यानी इधर उधर आग मत लगाओ। पीर फरमाया ये बहुत ही बुरी चीज है। इसके लिए रसूल खुदा और अकबर अल्लाह जो है उसने अपनी किताबों में, कुरान पाक में, हदीसों में, हमारी मौला ने हमारी और शास्त्र जिनानों फरमानों में इस चीज को बहुत ही बुरे शब्दों में याद किया है। जो आदमी इधर उधर करता है, लगाई लुगाई करता है, गिबत करता है, अल्लाह फरमाता है वो आदमी अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। किसी का भाई गुजर जाए उसकी लाश को काट के कोई गोश्त खा सकता है। अल्लाह फरमाता है कि जो लगाई लुगुई करता है, जो दुश्मनी पैदा कर देता है और गिबत करता है, तो वो मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। बहुत से झगड़े दुनिया के अंदर इसी तरह से होते हैं। हमारे बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं कि जो हमारे कान में जहर भर देते हैं। सुना तुमने, वो फलाना है ना, वो कल मेरे को तुम्हारे लिए ऐसा कह रहा था। हालांकि ये झूठी बात है। और ये आदमी जब उधर जाएगा तो उसको मेरे मुंह से कहेगा, और अबू अली तुम्हारे लिए ऐसा बोलता था। तो हमारे दोनों के दिल जो है आपस के अंदर खराब हो जाएंगे। एक दूसरे को नफरत और हेत की नजर से और शक और दौ की नजर से देखेंगे। इस तरह इंसानों के दिल जुदा हो जाते हैं। बहुत सी औरतें दूसरी औरतों के मुतालिक, उनके शोहरों के मुतालिक बातें चीते करके मियां बीवी में झगड़ा पैदा कर देती हैं। बहुत से भाई हैं, वो भाई भाइयों को जुदा कर देते हैं, बाप बेटे को जुदा कर देते हैं। तो ये जो चीजें हमारे मजहब के अंदर, उसको बहुत ही बुरा कहा गया है, कंडेम किया गया है, इसको गुनाह माना गया है। फिर फरमाते हैं कि तुम प्यारी की दूरी न करो और पड़ोसी के साथ कभी भी दुश्मनी नहीं रखनी, क्योंकि तुम्हारा इमीडिएट हेल्पर जो है वो तुम्हारा पड़ोसी नेबर है। अपने नेबर के साथ बहुत अच्छा सलूक रखो और उसको कभी दुखी नहीं करो। नबी करीम ने पड़ोसी के लिए बहुत हुक्म फरमाए हैं। इतनी दफा घड़ी घड़ी अपनी वाजी के अंदर नबी फरमान करते थे पड़ोसी के लिए। तो एक दिन रसूल अकरम फरमाया, मुझको पड़ोसी के हक के लिए इतना कहा गया है कि मुझे ऐसा लगा कि शायद अल्लाह कह देंगे कि तुम्हारी मिल्कत के अंदर तुम्हारा पड़ोसी जो है वो वारसदार है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पड़ोसी का बहुत ध्यान रखो, चाहे वो कोई भी कौम का हो, उसको दुखी मत करो। विश्वास घात के करवी नाही, परिजरी वस्तु के लेवी नाही। किसी आदमी ने आपके ऊपर भरोसा किया, उसको कभी खराब मत करो, उसके साथ कभी दगा मत करो। जो ट्रस्ट है इसमें डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। विश्वासघात जो है इसको चीटिंग कहते हैं। फिर ने इस चीज को बहुत बुराई से मना किया। और कुरान शरीफ के अंदर भी ये चीज है कि तुम चीटिंग ना करो। तुम्हारे ऊपर अगर ट्रस्ट रखा गया है तो उस ट्रस्ट को पूरा करो। इसको अरबी जबान के अंदर अमानत कहते हैं। और अमानत की जो प्लूरल है वो वर्ड है अमानात। हमारा जो पांचवा पाक है उसके अंदर अल्लाह ने हमको अमानत के लिए ख्याल खींचा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तखूनु अल्लाह वर्रसूल, अल्लाह और रसूल के साथ खयानत न करो, डिसऑनेस्ट मत बनो, क्योंकि उसने तुमको एक ट्रस्ट दिया है। وَتَخُنُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور خدا نے جو تم کو امانت دی ہوئی ہے اس کے اندر تم ہیر پھیر کرتے ہو اور تم اس بات کو جانتے ہو۔ یہ آیت جو ہے وہ دسوند اور ہماری مذہبی ڈیوٹیوں کی طرف ہے۔ خدا نے ہمارے اوپر یہ فرض ڈالا گیا اور یہ ہمارے اوپر اس نے ٹرسٹ کیا ہے کہ تم کھاؤ پیو، اپنے مذہب کے اوپر عمل کرو، کیونکہ ہم نے بیعت کی ہے، پرامس دیا ہے۔ اور پرامس کر کے جب ہم توڑ دیتے ہیں تو ہم نے دغا بازی کی، چیٹنگ کی، خدا کے ساتھ ہم نے دھوکہ کیا۔ مجھے فرماتے ہیں کبھی بھی کسی کے ساتھ وشواس گھات نہ کرو۔ اگر تم نے پرامس کیا ہے، تم کو نقصان بھی ہوتا ہے، تو بھی اپنے پرامس کے اوپر کھڑے رہو۔ یہ اچھے ایماندار مومن کی نشانی ہے۔ پڑی جڑی وستو کے نہیں لے بھی نہیں۔ آپ رستے کے اوپر جا رہے ہیں، کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، وہ اٹھا کے کھیسے میں مت رکھو، اس سے تمہارا حق نہیں۔ کسی بھی کوئی چیز ملے، وہ چیز کو اس کے مالک کو واپس کر دو۔ اگر اس کا مالک نہیں ملتا تو نبی فرماتے ہیں کہ پولیس میں دے دو، گورنمنٹ کو دے دو کہ میرے کو یہ چیز ملی ہے۔ پھر پولیس کھا جائے یا اس کے مالک کو پہنچا دے دے، وہ پولیس کا کام۔ لیکن آپ خدا کے دربار کے اندر بالکل سچے ہو گئے۔ ایک جگہ میں نے یہ کی، سعودی عربیہ کے اندر कभी आपके खींचे में से पर्स गिर जाए वो उधर ही पड़ा रहेगा, कोई इसको उठाएगा नहीं, क्योंकि अगर किसी ने उठा लिया और पकड़ा गया तो सऊदी लॉ के हिसाब से उसका हाथ काट डालते हैं, जैसे चोर की सजा होती है। तो दुनिया के अंदर इस किस्म के बहुत से बनाव बन के रहते हैं। कई आदमी किसी के घर में मेहमान के तौर पर जाते रहते हैं या पेइंग गेस्ट के तौर पर रहते हैं और फिर उधर की इधर उधर की चीजें उठा के चोरी कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक पेंसिल तक भी किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए। कोई चीज अगर लेनी ही है तो उसके धन की इजाजत लेके लो कि भाई मुझको ये चीज चाहिए, क्या तुम मुझको दे सकते हो? वो कहे ले जाओ तो खुशी के साथ ले जाओ, हक हो गया। लेकिन किसी भी आदमी की मिल्कत की कोई भी चीज उसकी इजाजत के बगैर रजा के बगैर नहीं लेनी चाहिए। किन जाना पड़िए जानी, उधार उछीनो ना राखिए प्राणी। अब कैसा ताजुब लगता होगा कि पीरों ने हमारी लाइफ की कितनी छोटी छोटी चीजों के लिए भी हमारा ध्यान खींचा है। फरमाते हैं कि कहने जाल न पाड़िए जानी, किसी के लिए जाल मत बिछाओ। जाल बिछाने का मतलब समझते हैं? किसी आदमी को ट्रैप करना, किसी आदमी के पीछे जासूसी करके उसको फंसा देना, उसका वीक पॉइंट ढूंढ के उसको दुख में डाल देना, ये जाल फैलाने की बात है, ट्रैप करने की बात है। ये कहते हैं ये चीज अच्छी नहीं, ऐसा मत करो। और उधार उछीनो, किसी के पास ले आओ तो उसको वापस करो। कभी किसी के पास से थोड़ा सा नमक भी लेके आए हो तो ये नमक भी जब आपके हाथ में आ जाए तो उसको वापस करो। किसी से उधार लिया हुआ है उसको कभी नहीं दिया तो ये चीज आपको मौत के वक्त दुख देगी। आज मैं एक जगह मैं थोड़ा सा लेक्चर कर रहा था तो मैंने इस बात के लिए ध्यान खींचा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर में जब कोई आदमी आके ये कहे कि या नबी मेरा बाप गुजर गया, मेरा भाई गुजर गया या मेरा सगा गुजर गया, आप चल के फातिहा पढ़ दो, दुआ करो, तो नबी साहब पहला क्वेश्चन ये करते थे कि इस आदमी के ऊपर किसी का लेना है, उधार है? अगर वो कह देंगे नहीं या नबी उसके ऊपर किसी का लेना नहीं है तो नबी जाते थे फातिहा पढ़ते थे। अगर वो कह देंगे कि हाँ या नबी उसके ऊपर कुछ आदमियों का लेना बाकी है तो नबी फरमाते थे कि तुम उसके बेटे भाई जो कुछ भी हो तुम ये आपस के अंदर एग्रीमेंट करते हो कि तुम उसका लेना चुका दोगे? तो वो कहे हाँ या नबी मैं इसका उधार चुका दूंगा कर्जा। तभी भी नबी साहब जाके उसकी मैयत से फातिहा पढ़ते थे, दुआ करते थे। लेकिन अगर कोई आदमी किसी मैयत का कर्जा उतारने के लिए तैयार नहीं होता था या उसके बेटे कह देने की हमारी शक्ति नहीं या उसकी इतनी मिल्कत नहीं तो नबी साहब उसके जनाजे पे जाके दुआ नहीं करते थे, फातिहा नहीं देते थे। फरमाया कि ये कर्जा छोड़ के मर गया है उसको मैं सिफारिश नहीं करूंगा, रिकमेंड नहीं करूंगा। तो किसी से हमने उधार लिया है और हमने उसको नहीं दिया, हमारे बहुत से लोगों की ये आदतें हैं, उछीना ले आते हैं और वो फिर भरपाई नहीं करते हैं। और जिसका हमने कर्जा लिया है वो कई दफा फोन करता है, बुलाता है और अगर आदत ये हो जाती है कि उस आदमी को देख के हम भाग जाते हैं कि मालूम ही ना करें। आपको एक घिनन का पाठ सुना, जो रिसर्च का जिनान है, लून पमीना साहेबा लेखा ले से लून पमीना साहेबा लेखा ले से प्यारे किम करी उत्तर समय देशो जुगे सर रस गुरव नाम गति ना होए जी। लून पानी का तुमने कितना लून खाया, लून कहते हैं सॉल्ट को, कितना तुमने सॉल्ट खाया, कितना तुमने पानी पिया, मतलब कहने का यह है कि इतनी माइन्यूट चीजों का भी खुदा हिसाब मांगेगा। तो जब हमने किसी का कर्जा उठाया और वो कर्जा नहीं भरा और उसका खाना उस आदमी का हक मेरे पेट में रह गया है, खुदा नजात नहीं देगा। और उस आदमी का ये कर्जा भरने के लिए हमारी इस्माइली तरीके की थ्योरी के हिसाब से उसको दुख उठाना पड़ेगा, वापस भी आना पड़ेगा, या और तरीके से खुदा उससे भरपाई करवाएगा, मगर कर्जा छोड़ा नहीं जाता। हमारे मजहब के अंदर एक तरीका निकाला गया है और वह यह है कि जब कोई शख्स गुजर जाता है तो हम जमा खाने के अंदर अनाउंस करते हैं, अलम मेरा फलाना आदमी गुजर गया। किसी भी आदमी का उसने मने वचने करने मन दुख किया, कुछ गुनाह किया, तो आप उसको बड़ा दिल रख के मुआफ कर दो। और अगर जिसके ऊपर उसका कुछ निकलता था, उस आदमी ने जिसका निकलता है कभी निकलने वाले के ऊपर जो कुछ भी निकलता है मुआफ कर दिया, तो खुदा फिर इसको बख्श देता है। लेकिन फिर फरमाया है कि किसी का उछी ना लिया, उधार लिया तो उसको वापस दो। हे पर को धन लई भगवूं नहीं पुत्र थे देऊं सही। किसी का धन लेके, किसी का हक लेके, चोरी करके, डिसऑनेस्टी करके या दगा फरेब करके हमने किसी का हक लेके और भाग गए। भाग जाने से दो मतलब होते हैं, या तो मुकर गए, मैंने ही नहीं लिया, मुझे नहीं पता, हालांकि खाया है, तो ये भी एक किस्म का भागना है, और या दान छोड़ के भाग गए कि उसको पता न लगे कि मैं रहा हूँ। तो फिर कहते हैं कि पुत्र थे देवू सही, तुमको वापस जन्म लेके वो चीज की भरपाई करनी पड़ेगी। हो सकता है कि वो तुम्हारे घर में पुत्र पैदा हो जावे, या वो बाप बनते, या किसी भी तरीके से, वो खुदा बेहतर जानता है कि कभी बाप देते हैं कभी पुत्र देते हैं, लेकिन इनका कहना यह है कि तुमको देना पड़ेगा। किन बारना दीजे जानी मूर्खाई पाना राखिए प्राणी। किसी को गाली मत निकालो। गालियां दो किस्म की हैं, एक गंदी भूंदी गाली है किसी को बदनाम करने की, उसको लोगों की नजर में नीचा पाड़ने की, बदनाम करने के लिए हम गाली निकालते हैं, ये गाली बहुत बुरी चीज है। लेकिन अपने किसी छोटे बच्चे को, छोटे भाई को माहौल में प्यार से कभी दबा के लिया, बच्चा है और वो अच्छे कुछ खेल तमाशे कर रहा है, बाप कुछ होते उसको प्यार से बुलाता है, ए गधेरे इधर आ, तो ये गाली नहीं है। गाली का मतलब है किसी को बदनाम करना। गाली का मतलब है दूसरों की नजर में किसी को नीचे डालना। तो फिर फरमाते हैं कि तुम किसी को गाली मत दो और मूर्ख पनो न रखिए प्राणी। क्योंकि बातें नहीं करनी चाहिए, मूर्खाई भली वलन अपने लाइफ में नहीं होनी चाहिए, अक्ल सीखने की बातें हमें करनी चाहिए। और अक्ल सीखने से लोगों के जो बड़े लोग हैं, जो इलम वाले हैं और धीरज वाले हैं, एक्सपीरियंस वाले हैं, उनके पास जाके बैठो और उनकी शिखामन वगैरह सीखो, तो आदमी के अंदर अक्ल आती है, अहमकपन घटता जाता है। अहमकपन की आपको एक बात सुना, यानी मूर्खपन क्या है। एक बड़े आदमी, अमीर आदमी को एक नौकर की जरूरत थी, तो कोई एक आदमी एक नौकर ले आया, उसका ही कोई नौकर एक दूसरे को ले आया। सेठ ने पूछा कभी नौकरी की है, तो कहा हाँ सेठ फलाने फलाने की नौकरी की है। अच्छा, तुम इधर तुम्हारा काम यह है कि जब हम खाना खाने तो तुम खड़े रहो, पंखा करते रहो ताकि मक्खियां ना आवे, और जब हमको कोई चीज की जरूरत पड़े तो हमको वो दिया भरोसा। पंखा लेके खड़ा हो गया, कुछ बाहर के मेहमान भी आए थे, नीचे सुफरे के सुफरे बिछा के खाना खाया जाता था, नमक की जरूरत पड़ी तो जो सेठ था उसने इस नौकर को कहा जाओ थोड़ा नमक लेके आओ। भले साहब पंखा रखा, किचन में जाके हाथ के ऊपर थोड़ा नमक लेके आया, आ तो गया लेकिन सेठ को बुरा लगा। जब मेहमान चले गए तो उसको बुलाया, बेवकूफ नमक मांगा है तो तुम्हारे हाथ में लिया, तुम्हारे हाथ गंदे हैं मेरे हैं, कोई चीज मांगी जाए तो प्लेट में रख के ला, क्या मूर्खपना है। कहता साहब तौबा करता हूँ, दूसरी दफा ध्यान रखूंगा। चलो सेठ ने जाके आराम किया। एक दो घंटे के बाद उठा, इसको बोला मेरे जूते लाओ, एक ट्रे लेके जूते रख के लेके आया, नमक हाथ में लाया जूते प्लेट में लाया, ये है मूर्खपना। तो फिर कहते हैं मूर्खपना मत करो, अकल सीखो और गुरु मुर्शिद के पास जाके अच्छी बातें सीखो। मूर्खपने की एक बात सुना हो, बाज आदमी मूर्ख होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं, नेक होते हैं। उनको जब कहो ना तुम्हारी भूल है तो कहते हैं साहब मेरी भूल हो गई, और वो सुधर जाते हैं। बाज ऐसे मूर्ख हैं कि जो जिद्दी हैं, वो मूर्खाई भी करते हैं और इंसिस्ट करते हैं कि हमने मूर्खाई नहीं की। ऐसे मूर्खों के अंदर हमारी जमात में वो लोग हैं कि जो जमा खाने में लंबे पांव करके बैठते हैं। इन मूर्खों गधों को बहुत दफा समझाया गया कि ये जमा खाना इमाम का घर है, यहाँ नूर है, ये हमारा घर नहीं इमाम का घर है। वैंकूवर में मेरा घर है, उधर कोई भी आता है मैं उसको कहता हूँ प्लीज रिमूव योर शूज, मेरे घर में मुझे बूट नहीं चाहिए, बाजार की धूल मिट्टी मेरे घर में नहीं चाहिए, इस घर के अंदर अल्लाह का नाम दिया जाता है। मैं अपने घर की बात करता हूँ, ज्ञान पढ़े जाते हैं इस घर के अंदर, इल्म ज्ञान की तस्नीफ और इशायत हो रही है, किताबें लिखी जाती हैं, इस घर के अंदर इबादत होती है सारा दिन। मेरे घर में बूट नहीं आते, मेरे घर में कैनेडियन वाइट लोग, क्रिश्चियन लोग, गैर कौम के लोग भी मुझे मिलने आते हैं और मेरे घर से रिस्पेक्ट करते हैं, बूट उतार के अंदर आते हैं क्योंकि मेरा घर है। और कभी भी कोई टेलीफोन वाले या टेलीविजन वाले या इलेक्ट्रिक वाले ऐसे कभी आते हैं तो उनका भी यही हुक्म है, बूट उतारो उतार। इससे ज्यादा क्या मूर्खपना हो सकता है। फिर ने एक किनान के अंदर मूर्खपने की बात की है, कितना अच्छा पाठ है। सतगुरु कह रहे बात करना, आपको डिस्टर्ब किया। सतगुरु कह रहे काला कंबल धोइए, एक काला ब्लैंकेट है ये कहते हैं उसको धो। अनेच्छा मन साबुन लाए, साबुन की एक लॉट नहीं छह मन, एक मन यानी 40 किलो का, तो 6×24 240 किलो साबुन, उसको लगाओ धोते रहो धोते रहो। सतगुरु कह रहे काला कंबल धोइए, अनेच्छा मन साबुन लाए, तेम मूर्ख ने छ मास लगी समझावीए, तो न मेरे पोतानु सुभाए रे, भाई न मेरे पोतानु सुभाए। अगर मूर्ख को छह महीने समझाते रहो वो अपनी आदत नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ेगा। क्यों? मूर्ख और विद्धि। तो मुर्शिद कहते हैं कि जो मूर्ख बना है वो राखो नहीं। गुरु नर दर्शन सहुने चरखूं, सतगुरु कहे ते नर नर गुण। गुरु नर की नजर में सब लोग बराबर हैं, लेकिन गुरु मुर्शिद अगर किसी के लिए कहता है कि ये आदमी नरखू, नरखू कहते हैं बिल्कुल अकेला अचंबा और पाक साफ जो है जिसमें कोई ऐब ना होवे, तो वो आदमी अच्छा है। सचो झूठो ना करिए वाद, जुगो जुग से न रमिए साध। सच्ची झूठी मत बनाओ, सच्ची बात को झूठा, झूठी बात को सच्चा। जैसे कि खोटे विटनेस वगैरह उभर करके खड़े करके हम किसी के विरुद्ध में खोटी तक में खा के सच्ची बात को झूठा बना देते हैं, झूठी बात को सच्चा बनाते हैं। ये कहते हैं कि इस तरह सच्चा झूठा किसी के साथ वाद नहीं करना। वाद कहते हैं डिस्कशन करना, डिबेट करना, किसी के साथ आर्गुमेंट करना। यानी झूठी बात को सच्चा करने के लिए आर्गुमेंट मत करो। जुओ जुगते न रमिए, जुआ कहते हैं गैम्बलिंग को, और पुराने जमाने के अंदर चौपट खेलते थे। तो ये जो चौपट खेलना, हाउसी हाउसी खेलना, वो चीज से जिसमें जुगाड़ है, पीर ने मना किया है कि भाई जुआ ना खेलो। ना छंद ना जो भवाई, छड़ छड़ भेद सत खोए भाई। नाद छंद अभी सुना, और अभी और वो भी जमात खाने ने मुखी के सामने, ये मूर्ख। फिर फरमाते हैं कि नाद छंद जो आदमी डांस वगैरह करे, जिसके अंदर खराबी और गंदी चीजें होवे, नंगापन होवे, ये कहते हैं उस नाद छंद के अंदर जिसके अंदर कूड़ कपट की बातें होवे, उसको मत देखो। ना जो ये भवाई, छड़ छड़ भेद सत खोए भाई। कभी तुम ऐसी महफिल में जाओ कि रंडियां नाच रही हैं, नंगे नाच हो रहे हैं और गिमिक हो रही है, ये कहते हैं तुम्हारी जो इबादत रूहानी साइड है ना, वो कमजोर हो जाएगी, छड़ छड़ हो जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। 21वां पाठ है, खारो मोरो अन के वो नहीं, वो खानो पन को बालो नहीं। खारो खारो मोरो अन के वो नहीं, वो खानो पन खूब भाषण नहीं। औरत ने खाना पकाया, किसी मर्द की आदत हो गई, हर रोज कुछ न कुछ उसमें से खोल निकालेगा। आज नमक नहीं है, स्वाद बराबर नहीं, खुशबू बराबर नहीं। फिर कहते हैं अन्न को कभी वखोड़ो नहीं, जो कुछ भी खुदा ने रोजी तुमको दी है उसका वखान करो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मौला मुर्तजा अली रहमतुल्लाह अलैह अपने घर में बैठे थे, मौला खलीफा थे उस वक्त की बात करता हूं। एक किसी प्रोविंस के गवर्नर को मौला ने बुलाया था स्पेशली। वो गवर्नर के लिए मौला को न्यूज मिली थी कि ये आदमी लाख रिश्वत खाता है, खूब माल पैदा किया इसने। आया, बातचीत से बैठी, अकाउंट किया, खाने का वक्त हुआ तो मौला ने खाना मंगवाया। क्या मंगवाया? जौ की रोटी। जौ कहते हैं बारले को। आप बारले की कभी रोटी बनाओ, जब वो पक जाती है तो फिर आप उसको हाथ से तोड़ नहीं सकोगे, लकड़ी की तरह कठिन होती है। और मौला जौ की रोटी खाते थे। माता फातिमा एक रोटी बनाती थी तो गरम गरम रोटी के उसी वक्त छुरी से मौला टुकड़े काट लेते थे, या कभी हाथ से उसके टुकड़े कर लेते थे, 30 टुकड़े बनाते थे। और ये 30 के 30 ये टुकड़े एक लेदर की बैग में डाल के मौला रख देते थे। हर रोज उसमें से एक टुकड़ा निकाल के मौला खाते थे और ऊपर से पानी पीते थे। ये मौला की खुराक थी। और कभी कभी खजूर मिलती थी तो खाते थे। मौला ने जब ये खाना मंगाया तो अंदर से खाना आया, क्या था? ये जौ की रोटी थी और पानी का प्याला था। मौला ने तो उठा के बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू किया। उस आदमी ने भी बिस्मिल्लाह की, लेकिन वो तो मुर्गियां और बिरयानियां खाने वाला आदमी, उसने तो जिंदगी के अंदर कभी ये खाया नहीं था। खूब हाथ से तोड़ना चाहा, टुकड़ा टूटे नहीं, दांत के अंदर रख के उसने तोड़ा, तो कुछ टुकड़ा टूटा, अब दांत चबा ना सके, थोड़ा पानी पिया, फीका था, नमक भी नहीं था, बड़ी मुसीबत पड़ी उसको। आहिस्ता से कहता है, या मौला थोड़ा नमक मिलेगा? मौला ने ताली बजाई, अंदर से मेड निकली, हुजूर ने फरमाया जाओ थोड़ा नमक लेके आओ। अभी बाजू के अंदर कोई का घर खुला नहीं था, तो एक दुकान खुली थी महाजन की, यानी कोई यहूदी था। तो वो यहूदी ऐसा ग्रीडी और सख्त था कि कोई भी या तो पैसे दो या कोई चीज मॉर्गेज रखो। तो जब वो मेड उसके पास गई तो उसने कोई चीज मांगी, तो मेड जल्दी से भाग के आई, वुजू करने का पीतल का लोटा था मौला के लिए, वो जाकर लोटा उसको रखाई, थोड़ा नमक लेके आई। इस आदमी ने नमक के साथ रोटी को लगा के थोड़ा चबा चबा के खाना शुरू किया और ढेर सा पानी पिया। और नमक जब अंदर गया और ऊपर से पानी पिया तो इसको बहुत बड़ा डकार आया, उद्कार आया। जब डकार किया तो कहता शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मौला कहते हैं, बेवकूफ, मेरा लोटा गिरवी रखवा के तुम खुदा का शुक्र करते हो? शुक्र ये था कि तुम्हारे सामने जो रखा गया है उसको खाओ और फिर शुक्र करो। मेरा लोटा मॉर्गेज रखा और उसका तुम शुक्र करते हो? तो फिर फरमाते हैं, खाने को कभी वखोड़ो नहीं, कभी नहीं। तो वखान नहीं कर सकते तो वखोड़ो मत। और दिनदारो, कभी आपकी बीवी ने अच्छा खाना नहीं भी पकाया तो भी कभी आपने कह दिया ना आज बहुत अच्छा था, तो वो बहुत खुश होगी, आपकी फैमिली लाइफ बेटर बनेगी। और खाना फरमाया कि वखान हूं पर वखोड़ हूं नहीं, उसका वखान करो। खाने का रिज़्क खुदा ताला ने दिया है। पर माता पर भाते नाही ने बाहर निकलिए, संसार कर सबसे ना करिए। सुबह के वक्त, अब इसमें एक चीज है जो मैं सोच रहा हूं कि किस तरीके से आपको कहूं, तो भी मैं कोशिश करता हूं कोई अच्छे शब्द ढूंढने की। ये फरमाते हैं कि सुबह के वक्त नहा के धो के तुम बाहर निकलो, ये तो हो गया। लेकिन ये जो दूसरा पाठ है उसमें जरा सोच रहा हूं, और वो ये है कि संसार कर्तव्य से न करिए। दो मतलब है उसके। एक तो ये है कि अपने कामकाज के धंधे के ऊपर जाने से पहले नहा लो, और सुबह नहाने की आदत बहुत अच्छी है। लेकिन इसके अंदर ये मतलब है कि सुबह के वक्त, प्रभात के वक्त सेक्सुअल यूनियन न करो, मना किया गया है। हमारे पूर्वों के ऐसे बहुत से गिनान हैं जिसके अंदर हमको लाइफ गुजारने की बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। इस बात की, इस आदत के अंदर एक बहुत बड़ी खराबी भी है। ऐसे वक्त के अंदर जो कभी इंसान का अमल रह गया तो वो बच्चा जो है ना वो पागल होता है। क्योंकि ये बात मौला अली के और कलाम के अंदर है, और अबू अली सीना की किताब के अंदर इस किस्म की काफी बातें लिखी गई हैं। मैं माफी चाहता हूं मौला के दरबार में, मगर जिनान ने लिखा है, क्या करूं मुझे कहना चाहिए। खट दर्शन पूजे नहीं पामो मोख, वेद शास्त्र कहे न करो दुएख। पत्थर की पूजा न करो, वो लोग के जो स्वामी और गुरु बन के, मुर्शिद बन के, मौलवी बन के, मुल्ला बन के जो लूटते हैं उनके पीछे मत चलो। फरमाया कि वेद शास्त्र कहे न करो दुएख, जो वेद शास्त्र पुराण हदीस फरमान जिनान जो कहते हैं उसके अंदर भूल मत निकालो। हजर इमाम के फरमान में अगर कोई चीज है तो आधी अवरी बातें करके, खोटी आर्गुमेंट करके, पीरों के गिनान या इमाम के फरमानों में से या कुरान हदीस में से हम कुछ भूल निकालना चाहते हैं तो मुर्शिद कहते हैं ऐसा मत करो। हिंगता चालता खामू नहीं, चतुराई ओ खाइए रहूं भाई, चतुराई चोखाइए रहूं भाई। हिंगता चालता, आदमी लेता है उस वक्त फरमाया कि लेते लेते खाना मत खाओ। इसी तरह से फिर फरमाते हैं कि चलते चलते खाना मत खाओ। हमारी यहाँ की सोसाइटी के अंदर तो चलते चलते लोग आइसक्रीम खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, हैमबर्गर खाते हैं और कई चीजें खाते हैं, हमको नहीं करना चाहिए। हमारे पीरों ने मना किया है, उसका कोई हाइजीनिक रीजन है? हाइजीनिक रीजन क्या है? नबी करीम ने भी ऐसा मना किया है हदीस के अंदर कि तुम चलते चलते खाना मत खाओ, बैठो और फिर खाओ। एक दफा नबी बैठे थे, कुछ लोग बैठे थे, बातें चीतें होती थी, तो एक आदमी नबी को मिलने आया। वो आया तड़का, गर्मी बहुत थी, पसीना पसीना हो रहा था। जैसे ही वो आया उसने पानी मांगा, एक गुलाम ने जाके उसको पानी दिया। उस वक्त वो गर्म हालत में था तो नबी ने फरमाया ठहरो, अभी पानी मत पियो। उसने पानी रख दिया। थोड़ी देर के बाद रसूल पाक ने उसको कहा अच्छा अभी पानी पी लो। तो किसी ने पूछा या नबी आपने क्यों ऐसा कहा? फरमाया कि वो आदमी गर्मी से बाहर आया, उसका कलेजा गर्म था और ये पानी जो पीता तो उसके अंदर उसको तकलीफ होती, पेन होता। नबी ने उस वक्त ये बात नहीं कही कि अल्सर होएगा, क्योंकि वो जमाने के अंदर इस किस्म के मेडिकल साइंस के नाम नहीं थे। और ये हकीकत है दीनदारों कि बहुत से लोग सख्त प्यास और तरस की हालत के अंदर रेफ्रिजरेटर खोल के खड़े खड़े पानी पी लेते हैं। ऐसे लोगों को बहुत सी दफा डुओडेनल अल्सर होता है, स्टमक का अल्सर होता है, क्योंकि अंदर की जो लाइनिंग है सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर के कारण से क्रैक हो जाती है। और ये क्रैक जो है ना अंदर की लाइनिंग का, यही अल्सर है। जो फिर कहते हैं लेते लेते चलते चलते खाना मत खाओ और चतुराई चोखाई में रहो भाई, होशियार और क्लीन रहो। जेर खाई जतलाई जे जीव मरते ते अवगमन आवागमन परी अवतर से। जो आदमी सुसाइड करेगा उसको वापस दुख में पड़ना पड़ेगा, वो आवागमन में आता है और उस आदमी की नजात नहीं होती, उसकी मोक्ष नहीं होती। रसूल अकरम फरमाते हैं कि जिसने सुसाइड कर ली उसके ऊपर जनाजा की नमाज मत पढ़ो, उसके ऊपर फातिया मत दो, उसकी मैयत को गुसल मत दो और उसको इस्लामी कब्रिस्तान के अंदर भी दफन मत करो। मैयत कमेटी के कुछ अमलदार यहाँ बैठे हुए हैं, उनका मैं ध्यान खींचता हूँ। ये इस्लाम की शरा है। हाँ, हम उसके बाद उसके लिए दुआ मांग सकते हैं कि खुदा उसके गुनाह मुआफ़ करे, उसकी खैरात कर सकते हैं, लेकिन रसूल अकरम ने ये बात फरमाई है। तो फिर भी कहते हैं कि जहर खा के जो आदमी जिंदगी को खुद निकालता है, यानी वो आदमी सुसाइड करता है, तो फरमाया वो आवागमन के फेरे में रह जाता है, उसकी मोक्ष मुक्ति नहीं होती। जब जमीन इच्छा न करवी स्त्री आगर गुजवात न करवी। बहनों माफ करो, मेरा कहना नहीं है, नबी का ये जो नवासा है कि सदर दिन नबी के नवासे हैं, आले रसूल हैं, इसमें है तो सही कुछ। फिर कहते हैं कि जर जमीन की मालदार बनने की, बहुत जमीन रख के प्रॉपर्टी खरीद के बड़ा होने की, यानी कि ठाकुर बनने की इच्छा मत करो। क्यों नहीं करो? लालच में पड़ जाओगे, नवानों का धक्का लगेगा, कभी फौर पे नहीं आएंगे। मतलब यह है कि खुदा ताला से मांगो कि या मौला मुझे आसूदा कर, मुझे किसी का मोहताज ना कर और मेरे ऊपर तू रहम कर, अच्छी हालत में रख। ऐसा हुआ है, बहुत से लोग जो गरीबी से मालदार बन गए उनके हालात बिगड़ गए, बदल गए। और अल्लाह का पाक ने कुरान शरीफ के अंदर इसी बाबत में फिरौन का दाखला दिया है कि फिरौन एक गरीब शख्स था, मूसा नबी के पास आके नौकरी की, मूसा नबी की उसने बहुत कॉन्फिडेंस जीत लिया और मूसा नबी ने उसके ऊपर रहम खा के उसको कीमिया का एक नुस्खा बताया कि वो तांबे को गला के उसमें एक पूरी की डाल दे तो सोना बन जाती थी। ये जो अलकेमी मूसा ने उसको सिखाई, उसने घर जाके तो खूब माल इकट्ठा कर लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे शर्त लगाई थी कि देख अपनी जरूरत का जितना तेरे को चाहिए उतना ही माल बनाना, मगर उसने तो फिर ऊंट और खजाने भर दिए। कहते हैं कि उसके खजाने की जो ताले थे उनकी चाबियों के लिए 40 ऊंट चाहिए, खाली चाबियां उठाने के लिए। खजाना कितना बड़ा होगा। और ये फिरौन मारा गया, गर्क हो गया, लालच में पड़ गया, दस्मत नहीं देता था, जकात नहीं देता था, खैरात नहीं करता था, स्टिंकी बन गया। इसलिए ये पीर कहते हैं कि मालदार बनने के लिए दौड़ धूप मत करो, खुदा से मांगो कि या मौला मुझे आसूदा रखना, किसी का मोहताज नहीं करना। और फिर कहते हैं कि ऐसी बात कि जिस बात के अंदर डेंजर है, छुपी हुई बात है, जिसको तुम भेद में रखना चाहते हो, किसी को मालूम नहीं करना चाहते, तो औरत के साथ अपनी बीवी के साथ वो बात मत करो। जिंदारो बहुत सच्ची बात है, बहुत सच्ची बात है। कनाडा में से एक आदमी अफ्रीका के एक गांव में गया, शादी करके आया, उस औरत को यहां लेके आया, उसको इधर की सिटीजनशिप थोड़े वर्षों 3 बरस के बाद मिल गई। सिटीजनशिप जब मिल गई तो इस मर्द की $50,000 की कैपिटल मिल्कत वगैरह थी। इस औरत ने पहले से ही अपने मन की नीयत खराब रखी हुई थी। मर्द ने उसको सब बताया कि फलाने बैंक में मेरा ये है, फलाने ठिकाने में मेरा ये है। इसने जानबूझ के झगड़ा किया, कोर्ट में जाके $25,000 इसने निकलवाए उसके पास से। और बाद में पता लगा कि ये औरत किसी और की बीवी है और इधर आके इसने शादी की। अपने मजहब की बात करता हूं, इस किस्म के दगे फरे, इस किस्म की बातें हमारी जमात में होती रहती हैं। ये दुनिया है, सब तो सब मोमन नहीं बनते। तो पीरों के कलाम के अंदर बहुत होशियार रहने की बातें जो है ना, उनमें ये चीजें हैं। अगर मैं पानी ना चाहू जाने, नीलो धार नावी है प्राणी, आग जलती है। फिर कहते हैं पानी के छींटे मार के आग को मत बुझाओ, उसका कोई रीजन होगा। हो सकता है कि पानी डालने से जब हम आग बुझाते हैं तो वो आग के अंदर से जो गैसेस निकलती हैं वो गैसेस कार्बन है, खराब है। और भी कोई मकसद होगा जो मुझे मालूम नहीं, मगर पीर के कलाम में है कि आग को पानी डाल के मत बुझाओ। हमारे घरों के अंदर तो अब वो लकड़े कोयले जलते नहीं, अब तो यहाँ गैस के चूल्हे और इलेक्ट्रिक रेंजर हैं, मगर फिर भी कभी आप कोई पिकनिक के ऊपर जाओ और कभी लकड़ी कोयला जलाओ तो फिर कहते हैं ये बात याद रखो, पानी डाल के आग मत बुझाओ। और कभी बुझानी है उसके ऊपर मिट्टी डाल दो या उसको किसी मेटल से कवर कर दो। और दूसरी बात फरमाई कि जो लीलो झाड़, ऐसा दरख्त कि जो लीला है, लिविंग है, उसको काटो मत। ये बात तो नबी ने भी मना की है कि कोई भी झाड़ भले फ्रूट नहीं भी देता मगर उसको काटो नहीं, क्योंकि अगर फ्रूट नहीं देता तो शेड देगा। लेकिन और भी एक बात है, ये फॉरेस्ट को बचाने की बात भी है, जीरो ने कही, जिसके लिए आज दुनिया लड़ रही है। झाड़ जो है ना वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये झाड़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड खाते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, पर्टिकुलरली दिन के वक्त। और ये झाड़ों की वजह से बारिश होती है। जिस मुल्क के अंदर जंगल काट दिए गए वहां बारिश घट गई, अनाज पकना घट गया। तो ये इसका कहना एक साइंटिफिक चीज है। प्रभाते फूल चूते महाचे पापी के ही ऐब न उघारी आप, ऊपर पापी नहीं है, पाप है। प्रभाते फूल चूते महाचे पाप के ही ऐब न उघारी आप, सूरज निकलने से पहले फूलों को मत तोड़ो, इसमें गुनाह है। फूल के अंदर लाइफ है। प्रभाते यानी सूरज निकलने से पहले जो मौका है ना, वक्त है, उसको प्रभात कहते हैं। फरमाते हैं उस वक्त फूल न तोड़ो। एक और रीजन भी हो सकता है, बाज इंसेक्ट रात के वक्त फूल के साथ बैठे होते हैं। बाज ऐसे फूल हैं कि जहां उसके इर्द गिर्द सांप भी बैठे होते हैं। तो अगर अंधेरे के अंदर सुबह निकलने से पहले हमने कभी फूल तोड़ा तो उसके अंदर पाप क्या है? पाप यह है कि हमारी जान का खतरा है, ये रिस्क है। और फिर फरमाया है कि केली ऐब न उघाड़ भी, आप किसी आदमी का ऐब न खोलो। अगर किसी के अंदर कुछ बुराई है, अगर कोई आदमी खराब है, तो लोगों के अंदर जाके उसको उघाड़ा मत करो। और वाचिक प्राणी में आर न करिए, भोजन छोटी उठी ना पर हरिए। अवाचिक प्राणी यानी के जानवर, गाय बकरी बैल घोड़े गाय कुछ भी जो प्राणी जानवर हैं, पर्टिकुलरली कैटल, तो फरमाते हैं कि ऐसे जो अवाचक प्राणी हैं उनके ऊपर जुल्म मत करो। कभी तुम्हारी नौकरी में है, उनका खाना, उनका आराम, घास चारा, पानी वगैरह, उसका बंदोबस्त करो, उनको दुख ना दो। और भोजन शांति उसी ना परहरिए, भोजन को ऐसा ही पड़ा हुआ छोड़ के तुम भाग मत जाओ। मिसाल आप खाना खा रहे हो और खाना खाते खाते कोई बात याद आ गई या किसी ने बुलाया, तो फिर कहते हैं कि भोजन को इस तरह से तुम खाए बगैर, पूरा किए बगैर छोड़ के मत जाओ, बैठे रहो, खाना खाते रहो। उसको बोलो ठहर जावे या तुम्हारे साथ आके खाना खावे। ये छेले 99 और 100 पाठ बोलता है। सतपंथी तेजे धर्म अनुसरिया, लिखी सर पारे समय सोवे क्रिया रे भाई। सतपंथी तेजे, मोमन वो है कि जो सत धर्म के ऊपर, सत धर्म ने मजहब ने जो कुछ कहा उसके फरमान के हिसाब से चले। अरे मुनिवरो, मेरी लिखी हुई भी सदर दिन फरमाते हैं, मेरी लिखी हुई ये सोच क्रिया के ऊपर अमल करो। दीनदारो, ये भी सदर दिन ने हमें बातें बताई, इसमें ऐसी एक भी बात नहीं जो खोटी या खराब है, ऐसी एक भी बात नहीं कि जो हम नहीं कर सकते, ऐसी एक भी बात नहीं कि जो आजकल की दुनिया के हिसाब से न चल सके। तो ये सब की सब बातें हमारे खुद के जीवन को सुधारने और सुख करने के लिए दी गई हैं। और इंशाअल्लाह हम पीर दीन के इस फरमानों के ऊपर अमल करेंगे। मौला आपको सुखी आबाद रखे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, बदियों बुराइयों गुनाहों ना फरमानियों से बचावे। मौलाना हाजिर इमाम दीन दुनिया में आपकी चलती करे। मौला कुटुंब कबीले के अंदर सुख शांति मोहब्बत पलासन पे तफाक दे रहे। मौलाना हाजिर इमाम आपका ईमान ज्यादा करे, जान माल आल औलाद आबरू इज्जत रोजी रोजगार तंदुरुस्ती में बरकत दे रहे। सुखी रहो, आबाद रहो, खुशी रहो, फलो फूलो। मौला आपको जहर बातन दीदार दे रहे।